नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में बैठकों का दौर जारी। भाजपा और कांग्रेस समेत प्रमुख दलों में प्रत्याशियों के नामों पर आज फैसला होने की उम्मीद। निर्वाचन आयोग ने कहा, चुनाव में सभी प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रूपये होगी। चुनाव से जुड़े सभी खर्च नए बैंक खातों से करने होंगे। प्रदेश में दीपावली का अवकाश अब 20 अक्टूबर को होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की गजट अधिसूचना। और नेपाल में भारी बारिश के चलते गंगा समेत प्रदेश की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। 7 जिलों के 26 प्रखंडों के लगभग 3.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। कल पटना में आयोजित एक बैठक में घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। साथ ही महागठबंधन के नए सहयोगियों झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सभी घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वे पूरी बातों को रखेंगे।
पहले 1-to-1 बात करना है, क्रिस क्रॉस बात चल रही है, तो अभी हम लोग एक दूसरे से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कई सीट ऐसे हैं जो हमारे साथियों के हैं, कई सीट ऐसे हैं जो हर व्यक्ति अपना हिसाब से डोनेट कर रहा है या मांग रहा है, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सीसी में जो बातें हैं वो अपना बात रखेंगे, और कंक्रीट जो मुद्दे हैं कि हम सीट शेयरिंग पर कितना पहुंचे हैं, कितना सीट स्क्रीनिंग होगा, लेकिन कुछ भी यदि फैसला होगा तो हम लोग यहाँ ज्वाइंटली घोषणा करेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली सीईसी की इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम तय होने की संभावना है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश से सांसद तनुज पुनिया आज पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देंगे। इधर एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। नई दिल्ली में भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। इस बैठक में मुख्य रूप से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि समय आने पर जानकारी साझा की जाएगी।
सही समय पे सारी जानकारी साझा की जाएगी। अभी बहुत शुरुआती दौर में बातचीत शुरू हुई है।
विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए भाजपा चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि भाजपा अपनी अधिकांश सीटों पर आज प्रत्याशियों के नाम तय कर लेगी। वहीं जदयू की एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर कल आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। इस बैठक में जदयू कोटे की सीटों और उम्मीदवारों के चयन पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए जल्द ही सीटों के अंतिम बंटवारे की घोषणा करेगा।
संभावनाओं पर अब विराम लगना चाहिए, कुछ दिन का इंतजार करिए। हम समझते हैं कि जल्दी ही सभी सीटें और सभी पार्टनर हमारे पांचों साथ मिलकर इसकी घोषणा करेंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनाव में सभी प्रत्याशियों के लिए 40 लाख रूपये खर्च करने की सीमा तय की गई है। कल पटना में राजनीतिक दलों के साथ आयोजित बैठक में श्री गुंजियाल ने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्याशियों को चुनाव से जुड़े सभी खर्च अपने नए बैंक खाते से ही करने होंगे। चुनाव के दौरान प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि पर 50,000 रूपये से अधिक की नकद राशि रखने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि एक प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए 3 वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मान्यता प्राप्त दलों को 40 स्टार प्रचारकों की अनुमति दी जा रही है, वहीं जो दल मान्यता प्राप्त नहीं है वे 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार अपराध नियंत्रण के लिए प्रयासरत है। इसके लिए पड़ोसी राज्यों से भी वांछित अपराधियों की सूची साझा की जा रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्य सचिव तथा गृह सचिव के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रबंधन और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय मुद्दों के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने असामाजिक तत्वों और अपराधियों के चुनाव के दौरान सक्रिय होने की संभावनाओं को लेकर राज्य से अपराधियों की सूची के आदान प्रदान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर बातचीत की। इस दौरान झारखंड सरकार से अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने का आग्रह भी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से बिहार में हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए 3,66,000 मतदाताओं के नामों की जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने इस संबंध में कल 9 अक्टूबर तक हलफनामा देने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने कहा कि सभी के पास मसौदा मतदाता सूची है और अंतिम सूची भी 30 सितंबर को प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से आवश्यक डाटा प्रस्तुत किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई कल होगी। और अब चुनाव से जुड़ी संक्षिप्त खबरें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पटना पुलिस ने 184 कुख्यात अपराधियों को जिला बदर किया है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस की ओर से 270 अपराधियों पर सीसीए के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजा गया था। शेष 86 कुख्यातों को भी जल्द ही जिला बदर किया जाएगा। अररिया के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अनिल कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों को लेकर विमर्श किया गया। सुपौल के जिला परिवहन पदाधिकारी ने निर्वाचन कार्य के सुचारू संचालन के लिए वाहनों की उपलब्धता और ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वाहन मालिकों एवं पेट्रोल पंप मालिकों के साथ समन्वय बैठक की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा, कोसी, बागमती, गंडक, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं। नदियों के उफान से राज्य के 7 जिलों के 26 प्रखंडों की लगभग 3.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्णी प्रखंड के खरनाडीह गांव में निरहुत नहर का बांध टूटने के कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है। किशनगंज में महानंदा नदी के उफान के कारण ठाकुरगंज और दिघल बैंक प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं कैमूर जिले में कर्मनासा और दुर्गावती नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण रामगढ़ प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 9 अक्टूबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि पिछले 24 घंटों में बारिश में कमी से हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। एक रिपोर्ट।
बागमती नदी का जलस्तर लगातार चौथे दिन खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बना हुआ है। तटबंध के अंदर बाढ़ का पानी भरा है और दबाव कायम है। हालांकि 24 घंटों में बारिश में कमी आने से हालात में सुधार हुआ है। जल संसाधन विभाग के अभियंता तटबंध की निगरानी कर रहे हैं। खेतों में पानी भर जाने से धान के अलावा सब्जी की फसल भी खराब हो गई है। तरियानी प्रखंड के खुरपट्टी और बेलहिया गांव के कुछ लोग अभी भी तटबंध एवं अन्य स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह।
इधर जल संसाधन विभाग के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से लेकर फरक्का तक लगातार बढ़ रहा है। गंगा और अन्य नदियों में उफान के बाद फरक्का बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सभी तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रदेश में दीपावली का अवकाश अब 20 अक्टूबर को होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के अनुसार इससे पहले एनआई एक्ट के तहत तो राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर को दीपावली का अवकाश घोषित किया था। इधर सारण जिले में 6 नवंबर को होने वाले मतदान के कारण हरिहर क्षेत्र का प्रसिद्ध सोनपुर मेला अब निर्धारित तिथि से 6 दिन बाद शुरू होगा। जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि मेले का औपचारिक उद्घाटन 9 नवंबर को होगा। वहीं कार्तिक पूर्णिमा स्नान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 5 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में बालू खनन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से एक बार फिर शुरू होगी। खान और भूतत्व विभाग ने कहा है कि इस सत्र में लगभग 300 घाटों से खनन शुरू होने की संभावना है। गौरतलब है कि मानसून अवधि के दौरान 15 जून से बालू खनन पर रोक लगा दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजीकरण की अंतिम तारीख 7 नवंबर है। सुधार विंडो 10 नवंबर को खुलेगा और 12 नवंबर को बंद हो जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सीटों की गांठ सुलझाने में जुटे दल, महागठबंधन में आज शाम तक हो सकता है ऐलान। दैनिक भास्कर ने इसी खबर पर शीर्षक दिया है, सहनी अड़े चिराग रूठे। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, मतदाता सूची से हटाए गए 3,66,000 नामों का ब्यौरा दे आयोग। हिंदुस्तान की विशेष खबर है, डेढ़ दशक बाद अक्टूबर में 21 नदियां विकराल रूप में। आज अखबार लिखता है, जहानाबाद में सदर अंचल का राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में बैठकों का दौर जारी। भाजपा और कांग्रेस समेत प्रमुख दलों में प्रत्याशियों के नामों पर आज फैसला होने की उम्मीद। निर्वाचन आयोग ने कहा, चुनाव में सभी प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपए होगी। चुनाव से जुड़े सभी खर्च नए बैंक खातों से करने होंगे। प्रदेश में दीपावली का अवकाश अब 20 अक्टूबर को होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की गजट अधिसूचना। और नेपाल में भारी बारिश के चलते गंगा समेत प्रदेश की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। 7 जिलों के 26 प्रखंडों के लगभग 3.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।